आज हम एक नए अध्याय जिसका शीर्षक है सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप्स, इसका अध्ययन करेंगे। इस शीर्षक के अंतर्गत हम निम्न रूप से समूह की विशेषताएं, समूह निर्माण के आधार, समूह के वर्गीकरण, प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह तथा तुलनात्मक वचन के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप्स। मानव समाज के इतिहास में समूह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सभ्यता के आरंभ से ही मानव किसी न किसी प्रकार के समूह में रहता आया है। कुछ विद्वानों का कहना है कि मनुष्य ने अपनी सुरक्षा के लिए समूहों का निर्माण किया, तो कुछ लोगों का कहना है कि मनुष्य ने समूहों का निर्माण अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है, तो कुछ अन्य विद्वानों ने यह कहा है कि मनुष्य समूहों में इसलिए रहता आया है कि उसमें समूहशीलता की प्रवृत्ति पाई जाती है। खैर, कारण जो भी हो, सामाजिक समूह में समूह से ज्यादा शायद ही कोई अधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था है माफ करिए सामाजिक जीवन में समूह से ज्यादा शायद ही कोई अधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यही कारण है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समूह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसकी महत्ता इतनी अधिक है कि बुकार्डस, जॉनसन आदि समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के अध्ययन का विषय कहा है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि परिवार एक बुनियादी सामाजिक समूह है जहां प्रजनन के द्वारा समाज का स्वतः विकास होता रहता है। इस तथ्य पर बहुत जोर देने की जरूरत नहीं है कि जन्म लेते ही बच्चा सबसे पहले परिवार जैसे समूह का ही सदस्य बनता है। यहीं पर बच्चों का लालन पालन एवं समाजीकरण होता है। परिवार के अन्य सदस्य उसकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और बड़े होकर वे विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों का सदस्य बनते हैं। समाजशास्त्र में समूह शब्द का एक विशेष अर्थ होता है, अतः इस पर अलग से विचार किया जाना आवश्यक है। समूह की परिभाषा पर विचार करने के पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक समूह यानी सोशल ग्रुप सोशल कैटेगरीज या सोशल एग्रीगेट्स नहीं है। इसके बावजूद कुछ विद्वान इन शब्दों को लगभग एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। गिडेंस ने बताया है कि ये तीनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। इन तीनों का प्रयोग एक ही अर्थ में नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक समुच्चय यानी सोशल एग्रीगेट को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा है कि एग्रीगेट्स आर सिंपली कलेक्शंस ऑफ पीपल हु आर इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम बट शेयर नो डिफिनेट कनेक्शन विथ वन अनदर। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि बस पड़ाव या रेलवे स्टेशन पर एकत्रित जनसमूह को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता है। उसी तरह से मेले में आई हुई भीड़ को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता है। ये सभी सामाजिक समुच्चय के उदाहरण हैं। ऐसे समूह को बॉट मोर ने अर्ध समूह यानी क्वासी ग्रुप कहना स्वीकार किया है। सामाजिक श्रेणी के बारे में उन्होंने बताया है कि अ सोशल कैटेगरी इज अ स्टैटिकल ग्रुपिंग पीपल क्लासिफाइड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स दे शेयर सच एज हैविंग द सेम लेवल ऑफ इनकम और बीइंग इन द सेम ऑक्यूपेशन। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि किसी समान शिक्षा या आय वाले व्यक्तियों के समूह को सामाजिक श्रेणी कहा जा सकता है, सामाजिक समूह नहीं। व्यक्तियों के किसी समूह को सही अर्थों में सामाजिक समूह कहने की कुछ और भी शर्तें हैं जो निम्नलिखित परिभाषा से स्पष्ट होती हैं। जहाँ तक समूह की समाजशास्त्रीय अवधारणा का प्रश्न है, ऑकबर्न तथा निम्फकॉफ ने कहा है कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं एवं एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। इस विषय पर मकीवर एवं पेज ने ऐसा ही दृष्टिकोण प्रकट किया है, परंतु यहाँ यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस तरह के सामाजिक संबंध से समूह बनते हैं। उनकी परिभाषा से ऐसा भी लगता है कि जब कोई दो या दो से अधिक अपरिचित व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उससे समूह का निर्माण होता है, पर यह दृष्टिकोण थोड़ा भ्रामक हो सकता है। यह सही है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन है जहां सामाजिक संबंध पाया जाता है, परंतु जैसा कि आर के मटन का कहना है कि क्षणिक सामाजिक संबंध समूह को विकसित नहीं करते हैं। वस्तुतः समूह के निर्माण के लिए सदस्यों के बीच पाई जाने वाली अंतःक्रिया एवं सामाजिक संबंधों में बारंबारता या फ्रीक्वेंसी एवं अस्थायित्व समूह के ढांचे को स्पष्ट करता है। इसके अतिरिक्त मर्टन ने समूह के दो और महत्वपूर्ण पक्ष, पहला व्यक्तिपरक पक्ष तथा दूसरा वस्तुपरक पक्ष की भी चर्चा की है। इनका संबंध समूह की सदस्यता से है। व्यक्तिपरक पक्ष का अर्थ यह है कि स्वयं समूह के सदस्यों में इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वह समूह का सदस्य है। वस्तुपरक पक्ष का अर्थ यह है कि समूह के सदस्यों के अतिरिक्त दूसरे लोग या एक निरपेक्ष व्यक्ति भी इसे माने कि अमुक व्यक्ति अमुक समूह का सदस्य है। इस प्रकार मॉर्टन के अनुसार सामाजिक समूह के निम्न मुख्य तत्व हैं। पहला, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरा, कुछ हद तक अस्थाई एवं बार बार होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया। तथा तीसरा, समूह के सदस्य अपने आप को निश्चित समूह के सदस्य माने एवं बाहरी लोग भी उन्हें उस समूह के सदस्य माने। जॉनसन ने एक और महत्वपूर्ण पक्ष की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। उनके अनुसार सभी समूहों में सामाजिक संबंध होते हैं, किंतु सभी सामाजिक संबंधों से समूह नहीं बनते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सिर्फ सामाजिक संबंधों का होना समूह के निर्माण के लिए काफी नहीं है। समूहों के निर्माण के लिए सहयोग का होना भी आवश्यक है, इसलिए कि सामाजिक संबंध संघर्ष पर भी आधारित हो सकते हैं। युद्ध स्थल में दो शत्रु देश के सेनाओं के बीच लड़ाई भी सामाजिक संबंध के ही उदाहरण है, पर स्पष्टतः दो शत्रु देश की सेना किसी समूह का निर्माण नहीं करते हैं। सामाजिक समूह को गिडेंस ने बहुत ही स्पष्ट ढंग से परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। अ सोशल ग्रुप इज सिंपली अ नंबर ऑफ पीपल हु इंटरैक्ट विथ ईच अदर ऑन अ रेगुलर बेसिस। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के साथ परस्पर अंतःक्रिया की प्रक्रिया चलती रहती है। यह तभी संभव है जब लोग एक दूसरे को जानते हों। चूंकि भीड़ के अंतर्गत सभी लोग एक दूसरे को नहीं जान पाते हैं, इसलिए सभी के बीच सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो पाती है। अतः भीड़ को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता है। मकीवर एवं पेज ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया है। उन्हीं के शब्दों में, बाय अ ग्रुप वी मीन एनी कलेक्शन ऑफ सोशल बींग्स हु इंटर इनटू सोशल रिलेशनशिप विथ वन अनदर। दूसरे समाजशास्त्रियों जैसे जिटलिन, मेटा स्पेंसर, जॉनसन, बॉटमोर इत्यादि ने भी इस विषय पर इसी ढंग का विचार व्यक्त किया है। सामाजिक अंतःक्रिया की प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अभाव में मनुष्यों के किसी भी प्रकार के समूह को समाजशास्त्रीय अर्थ में समूह कहा ही नहीं जा सकता है। सामाजिक अंतःक्रिया समूह का एक मूलभूत तत्व है। इस तत्व का पर हॉटन एवं हंट ने जोर देते हुए कहा है कि द एसेंस ऑफ द सोशल ग्रुप इज नॉट फिजिकली क्लोजनेस बट ए कॉन्शियसनेस ऑफ ज्वाइंट इंटरेक्शन। व्यक्तियों में एक प्रकार की ऐसी भावना पाई जाती है कि वे अंतःक्रिया के द्वारा समूह का निर्माण करते हैं। इसी भावना को जर्मन समाजशास्त्री गिडिंग्स ने समचेतना कहा है। इसी तथ्य को बहुत संक्षिप्त ढंग से फिक्टर ने कहा है, द ग्रुप इज ह्यूमन बीइंग इन रेसिप्रोकल रिलेशन। ऊपर के विचारों से यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज में जितने समूह दिखाई देते हैं उन सभी को हम समाजशास्त्रीय परिभाषा में सामाजिक समूह नहीं कह सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, भीड़ को हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते हैं, पर नातेदार समूह, परिवार, जातीय समूह, मित्र मंडली इत्यादि सामाजिक समूह के उदाहरण हैं। इस प्रकार सामाजिक समूह में व्यक्तियों के बीच विचार, हित या स्वार्थ की प्रायः समानता होती है। इनके बीच नियमित अंतःक्रिया तथा सामाजिक संबंध का बंधन होता है। सामाजिक समूह के सदस्य परस्पर एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। समूह की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। उपयुक्त विचार के आधार पर समूह की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, एक से अधिक व्यक्तियों का संकलन, यानी समूह में हमेशा एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। कम से कम दो व्यक्ति तो अवश्य रूप से होते हैं, जैसे पति पत्नी मिलकर परिवार समूह का निर्माण करते हैं। दो व्यक्तियों के आपसी संबंध को जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल ने युग्म यानी ड्रायड कहा है। इस तरह तीन के समूह को त्रिमूर्ति यानी ट्रायड कहा जाता है। समूह में अधिकतम संख्या निश्चित नहीं होती है, क्योंकि लाखों व्यक्तियों का भी समूह संभव है। समूह के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, पर समूह भीड़ जैसे व्यक्तियों का संकलन नहीं है। दूसरा, सामान्य उद्देश्य, कॉमन गोल्स। समूह के सभी सदस्यों का एक निश्चित लक्ष्य होता है, जिसके चलते सभी लोग एक साथ रहते हैं। सामान्य उद्देश्य के अभाव में समूह के सभी सदस्य एक साथ नहीं रह सकते हैं। समूह में हर व्यक्ति का अपना कुछ न कुछ स्वार्थ तो होता ही है, पर कुछ स्वार्थ वैसा होता है जो समूह के सभी व्यक्तियों का समान रूप से होता है। कभी कभी समान उद्देश्य के बावजूद समूह का निर्माण नहीं होता है। सभी हिंदुओं या मुसलमानों के बीच समान धार्मिक उद्देश्य हैं, पर वे सब मिलकर एक समूह का निर्माण नहीं करते हैं। तीसरा, विचारों एवं क्रियाओं का पारस्परिक आदान प्रदान, रेसिप्रोसिटी एंड म्यूचुअल अवेयरनेस। समूह के अंतर्गत हम विचारों, क्रियाओं आदि का आदान प्रदान करते हैं। सभी सदस्यों के बीच एक प्रकार की पारस्परिकता पाई जाती है। जब तक समूह के सभी सदस्यों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होती, तब तक उस जन समूह के समाज को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता है। यही कारण है कि किसी मेले या भीड़ को सामाजिक समूह नहीं कहा जाता है। चूंकि कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों के बीच विचारों एवं क्रियाओं का आदान प्रदान होता है, इसीलिए कक्षा को सामाजिक समूह कहा जाता है। मकीवर एवं पेज तथा आर के मटन ने इस तथ्य पर कुछ विशेष ही बल दिया है। व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि सभी के बीच जीवन के मूल्य लगभग एक जैसे हों, जिसे लजार्स फेल्ड ने एवं मार्टन ने वैल्यू होमोफिली कहकर पुकारा है। इस भावना के अभाव में लोगों के बीच मित्रता का भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि समूह के सदस्यों के बीच मात्र सामान्य उद्देश्य ही नहीं, बल्कि सामान्य जीवन मूल्य भी होना चाहिए। चौथा, सापेक्षिक अस्थायित्व। प्रत्येक समूह सापेक्षिक रूप से विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के संकलन की तुलना में ज्यादा अस्थायी होता है। जैसे किसी भीड़ या मेले की तुलना में परिवार, कक्षा, गांव जैसे सामाजिक समूह अधिक अस्थायी माने जाते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि समूह के सभी सदस्यों के बीच एक ठोस सामाजिक संबंध पाया जाता है। सामाजिक पहचान। समूह के सभी सदस्य अपने आप को समूह से एक अलग किस्म की पहचान रखते हैं। जो लोग समूह के सदस्य नहीं हैं, वे भी लोगों को इसी रूप में जानते हैं कि अमुक व्यक्ति किस समूह का सदस्य है। यह जरूरी नहीं है कि किसी समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को भली भांति पहचाने ही। बड़े बड़े सामाजिक समूहों में तो सभी सदस्यों के लिए एक दूसरे को पहचानना कठिन भी है, जैसे अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ। महत्वपूर्ण है कि यह एक समूह या बाहर के लोग किसी व्यक्ति को किसी समूह के सदस्य के रूप में जानते या स्वीकार करते हैं। छठा, व्यवहार का एक निश्चित नियम, अ डेफिनेट पैटर्न और रूल ऑफ बिहेवियर। प्रत्येक समूह के अंतर्गत सदस्यों के व्यवहार के निर्धारण के लिए एक निश्चित नियम कानून होता है। समूह अपने अस्तित्व के लिए यह अपेक्षा रखता है कि सभी सदस्य समूह के नियम कानूनों का ठीक से पालन करें। यह जरूरी नहीं है कि समूह के सारे नियम कानून लिखित ही हों। औपचारिक समूह के अधिकांश नियम कानून लिखित और अनौपचारिक समूह के नियम कानून अलिखित होते हैं। नियम कानून के अभाव में किसी समूह का संगठित रहना लगभग असंभव है। सातवां, ऐच्छिक सदस्यता। किसी सामाजिक समूह का सदस्य होना व्यक्तियों की इच्छा पर है। हम समूहों की सदस्यता के संबंध में कुछ बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को ध्यान में रखकर ही किसी समूह का सदस्य होना स्वीकार या अस्वीकार करता है। व्यक्ति जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार किसी समूह की सदस्यता को त्याग सकता है, पर कुछ प्राथमिक समूह ऐसे होते हैं जैसे परिवार, सके संबंधी, जिनकी सदस्यता न तो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और न ही उसे आसानी से छोड़ सकते हैं। आठवां, एक सामाजिक संरचना। हर एक समूह की एक अपनी अलग पहचान होती है। प्रत्येक समूह के अंतर्गत उसके सदस्यों के लिए विभिन्न प्रकार के नियम कानून होते हैं। प्रत्येक सदस्य का समूह की संरचना में कहीं न कहीं एक स्थान जरूर होता है, अर्थात समूह के अंतर्गत एक प्रकार का अस्तरण पाया जाता है। किसी भी समूह में सभी सदस्य समान स्तरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं। समूह में सापेक्षिक अस्थायित्व होने का एक प्रमुख कारण भी है। भीड़ एक सामाजिक समूह नहीं है क्योंकि वह अस्थायी एवं संरचना विहीन संकलन है। समूह निर्माण के आधार, बेसिस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। कभी कभी यह प्रश्न उठता है कि लोग आखिर समूह में क्यों रहते हैं या समूह में रहने का मुख्य आधार क्या है। समाज में समूहों के निर्माण के कई कारण या आधार हैं, जिसे फिक्टर ने चार खंडों में विभक्त कर इस प्रकार रखा है। पहला, सामान्य कुल यानी कॉमन एंसेस्ट्री। समाज में बहुत लोग रक्त या विवाह के आधार पर इकट्ठा रहना चाहते हैं। परिवार या ग्रामीण समुदाय जैसे समूहों का मुख्य आधार सामान्य कुल परंपरा ही है। आदिम जाति समाज में कुल यानी क्लेन जनजाति समूह का मुख्य आधार होता है। दूसरा, सामान्य क्षेत्र, टेरिटरी शेयर्ड इन कॉमन। क्षेत्रीय समानता के आधार पर भी सामाजिक समूहों का निर्माण होता है। पड़ोसी और ग्रामीण समुदाय का मुख्य आधार क्षेत्रीय समानता है। खिलाड़ियों का समूह, नागरिक क्लब एवं क्षेत्रवाद या क्षेत्रीय समूह का आधार सामान्य क्षेत्र का होना है। तीसरा, सामान्य शारीरिक विशेषता, सिमिलर बॉडली कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत बार समूहों का निर्माण जैविक विशेषताओं के आधार पर भी होता है, जैसे युवा क्लब, महिला क्लब, नृजाति समूह इत्यादि। चौथा, सामान्य हित या स्वार्थ, कॉमन इंटरेस्ट्स। समान किस्म के स्वार्थ वाले व्यक्तियों का एक समूह होता है। उद्देश्यों की समानता के अभाव में समूह का निर्माण संभव नहीं है। यही कारण है कि विभिन्न किस्म के खिलाड़ियों का अलग अलग समूह होता है। संगीतकारों का अपना समूह होता है, व्यापारियों का एक अपना समूह होता है, ऑफिस या दफ्तर के कर्मचारियों एवं चोरों या पकड़मारों का भी अपना अलग अलग समूह होता है। हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति या हिफाजत के लिए अलग अलग समूहों का निर्माण करता है। इन्हीं चार परिस्थितियों में जब कोई एक स्थिति प्रबल हो जाती है तो सामाजिक समूह का निर्माण हो जाता है। समूह का निर्माण कभी भी अकारण नहीं होता है। कभी तो समूहों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से होता है, तो कभी स्वाभाविक रूप से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। लोगों के बीच इतने अधिक स्वार्थों की समानताएं या विभिन्नताएं पाई जाती हैं कि समाज में समूहों का उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक है। इस बात पर बहुत बल देने की आवश्यकता नहीं है कि समाज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति कभी अकेले नहीं रह सकता। समूह एक स्वाभाविक सामाजिक प्रक्रिया एवं घटना है जो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न शक्लों में जन्म लेता है और परिस्थितियों के बदलाव में मिट जाता है। समूह का निर्माण क्यों और कैसे होता है, इस संबंध में मकीवर एवं पेज ने व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले समान समूह का निर्माण क्यों और कैसे होता है, इस संबंध में मकीवर एवं पेज ने व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामान्य हित की भावना पर कुछ ज़्यादा ही बल दिया है। इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अपना तर्क निम्नलिखित ढंग से पेश किया है। उनका कहना है कि मनुष्य तीन कारकों से अपने स्वार्थों या आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। पहला, व्यक्ति स्वयं ही अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, पर यह व्यवहारिक नहीं है। दूसरा, व्यक्ति समाज के अन्य सदस्यों से संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है, पर वह मानव समाज के लिए विघटनकारी है। तथा तीसरा, व्यक्ति कुछ लोगों के साथ सहयोग के आधार पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। मकीवर एवं पेज के अनुसार तीसरा तरीका ही मानव समाज के लिए ग्राह्य या मानव तरीका है और इसी से समूह का निर्माण भी होता है। समूह के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी ऑफ ग्रुप्स। समूह के निर्माण के आधार एवं उसके स्वरूपों में इतनी अधिक विभिन्नताएं हैं कि समूह के वर्गीकरण के आधार भी एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे समूह का आकार, संरचना, उसके अंतर्गत सदस्यों के बीच संवेगात्मक लगाव की मात्रा, समूह का उद्देश्य, समूह का आधार, समूह का स्वरूप, उसका अस्थायित्व इत्यादि। यही कारण है कि समूह का वर्गीकरण अनेक प्रकार का होता है। यहाँ समूह के सभी प्रकारों की चर्चा किया जाना संभव नहीं है। समूह के कुछ प्रचलित प्रकारों तक ही हम अपने आप को सीमित रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले ए, और ए में लेस्टर वार्ड ने समूह के विभिन्न स्वरूपों को ध्यान में रखकर उसे मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया है, ऐच्छिक समूह यानी वॉलेंट्री ग्रुप्स एवं अनिवार्य समूह नॉन वॉलेंट्री ग्रुप्स। ऐच्छिक समूह, इसके अंतर्गत वे समूह आते हैं जिनकी सदस्यता हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से हासिल करते हैं। इसके लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। किसी क्लब की सदस्यता, राजनीतिक दल की सदस्यता, ट्रेड यूनियन आदि जैसे समूहों की सदस्यता, ये सब ऐच्छिक होती हैं। ऐसे समूहों में जिस प्रकार स्वतंत्र इच्छा से सदस्यता हासिल होती है, उसी प्रकार हम उसकी सदस्यता आसानी से छोड़ सकते हैं। सारांश यह है कि ऐसे समूहों में सदस्यता हमारी इच्छा पर निर्भर है। दूसरा, अनिवार्य समूह। कुछ वैसे भी समूह होते हैं जिनमें शामिल होना या न होना हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। परिवार, जाति समूह, प्रजाति समूह आदि कुछ ऐसे ही समूहों के उदाहरण हैं। ऐसे समूहों की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। हम किस परिवार के सदस्य हों, किस जाति के सदस्य हों, अथवा किस प्रजाति समूह, गोरे या काले के सदस्य हों, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है। जिस प्रकार हम ऐसे समूहों की सदस्यता अपनी इच्छा से हासिल नहीं करते हैं, उसी प्रकार हम उन्हें अपनी इच्छा से छोड़ भी नहीं सकते हैं। बी, सदस्यों के बीच घनिष्ठता एवं सामाजिक दूरी के आधार पर समूह को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला अंतर समूह यानी इन ग्रुप, और दूसरा बाह्य समूह यानी आउट ग्रुप। बहुत सारे लेखकों ने यह लिख रखा है कि समूह का यह वर्गीकरण समंतर ने की दिया है, जो सही नहीं है। समंतर ने अपनी पुस्तक फॉग फेस में केवल अंतर समूह की अवधारणा का ही जिक्र किया था, जिसके आधार पर बाद में अन्य लोगों ने बाह्य समूह की बात कही है। बियर स्टेट ने अंतर समूह एवं बाह्य समूह को एक दूसरे का प्रतिकूल मानकर दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पहला, अंतर समूह। अंतर समूह वह समूह है जिनके हम सदस्य होते हैं और जिससे हमारा अपनापन होता है या अपनेपन की भावना होती है। इसमें एक प्रकार की व्यम की भावना यानी वी फीलिंग्स पाई जाती है, इसलिए इसे कुछ लोगों ने वी ग्रुप कहकर भी पुकारा है। सदस्यों में सुख दुख को बांटने की इच्छा होती है और सभी सब परस्पर एक दूसरे से प्रेम एवं सहानुभूति रखते हैं। अंतर समूह एक प्रकार का अपनापन एवं भाव प्रदर्शित करता है, जिसे हम किसी सीमा के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। इसका कारण यह है कि यह लगाव किसी को अपने परिवार से, अपनी समिति से, अपने समुदाय से या पूरे राष्ट्र से भी हो सकता है, और ऐसी परिस्थिति में ये सभी हमारे लिए अंतर समूह हो सकते हैं। सदस्य अपने अंतर समूह को अन्य सभी सदस्य समूहों के लिए अलग मानते हैं। हॉर्टन एवं हंट ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जब व्यक्ति यह कहने लगता है कि यह मेरा परिवार, मेरा दोस्त, मेरा धर्म या मेरा राष्ट्र है, तब अंतर समूह की बात सामने चली आती है। दूसरी तरफ आदमी समाज में अंतः या बाह्य समूह का निर्धारण इस बात से नहीं होता था कि क्या उसका अपना और क्या पराया है। उस काल में लोग नातेदारी के आधार पर यह निर्णय लेते थे कि कौन समूह अंतः है या बाह्य है। जिन लोगों के बीच नातेदारी का संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाया जाता था, उन्हें अंतः समूह माना जाता था। जबकि आधुनिक समाज में अंतः या बाह्य समूह की अवधारणा का आधार नातेदारी मात्र नहीं है, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, भाषा, प्रजाति, राष्ट्र या समुदाय का क्यों न हो, वह अंतर समूह का सदस्य हो सकता है। आधुनिक समाज में कभी कभी यह पता भी नहीं चल पाता है कि किसे अंतर समूह और किसे बाह्य समूह कहा जाए। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि जिसके हम सदस्य हैं वह अंतर समूह है। दूसरा, बाह्य समूह। यह कई नामों से जाना जाता है, जैसे दे ग्रुप एंड अदर ग्रुप। यह वैसा सामाजिक समूह है जिसके हम सदस्य नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऐसे समूहों के साथ हमारा न व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होता है और न ही इसके साथ कोई अपनापन भरा लगाव। ऐसे समूहों को हम प्रायः अपना विरोधी मानते हैं और यही कारण है कि इसे हम संदेह की दृष्टि से भी देखते हैं। भारत में जो जातीय या सांप्रदायिक उपद्रव देखने को मिलता है, इसके पीछे मूल रूप से बाह्य समूह वाली भावना ही काम करती है। दो संप्रदायों के सदस्यों या दो भाषाई क्षेत्रों के सदस्यों या फिर दो अन्य निर्जाति समूहों के सदस्यों में अक्सर दंगे होते हैं और इसका मूल कारण यह है कि जिस समूह के हम सदस्य होते हैं उसे अपना समूह मानते हैं और अन्य सभी समूहों को बाह्य समूह मानते हैं। अंतर समूह या बाह्य समूह का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसके अंतर्गत परिवार जैसे छोटे समूह भी शामिल किए जा सकते हैं और पूरे राष्ट्र जैसे बड़े समूह भी। कभी कभी अंतर समूह से हमारा लगाव इतना गहरा हो जाता है कि हम बाह्य समूह को कई स्तरों पर संदेह के दृष्टि से देखने लगते हैं। बाह्य समूह के विरुद्ध कभी कभी हमारी मानसिकता इतनी पक्षपातपूर्ण हो जाती है कि देश या समाज की शांति भी खतरे में पड़ जाती है। इस प्रकार दूसरी जाति, धर्म, संस्कृति या प्रजाति के विरुद्ध हमारी धारणाएं आपसी संघर्ष को जन्म देती हैं। सी, सोरोकिन ने समूह के अंतर्गत पाए जाने वाले संबंधों के आधार पर उसे दो भागों में बांटा है। पहला, एकल बंधन समूह या एक कार्यात्मक समूह यानी यूनि बॉन्डेड या यूनिफंक्शनल ग्रुप, एवं दूसरा बहुबंधन समूह या बहु कार्यात्मक समूह यानी मल्टी बॉन्डेड और मल्टी फंक्शनल ग्रुप। एकल बंधन समूह, सोरोकिन ने वैसे समूह को एकल बंधन समूह कहा है जिसमें सभी लोग एक ही आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि कुछ लोग प्रजाति यानी रेस, लिंग यानी सेक्स, उम्र यानी एज, नातेदारी यानी किनशिप, भाषा, धर्म एवं शिक्षा के आधार पर समूह का निर्माण करते हैं तो उसे एकल बंधन समूह कहा जाता है। सोरोकिन ने पुनः इस समूह के प्रकारों को दो भागों में बांटा है। पहला, जैव सामाजिक एक कार्यात्मक समूह यानी बायो सोशल यूनिबॉन्डेड ग्रुप तथा दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक एक कार्यात्मक समूह सोशियो कल्चरल यूनिबॉन्ड ग्रुप। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जैव सामाजिक एक कार्यात्मक समूह का आधार जैविक है एवं व्यक्ति अपने किसी जैविक विशेषता के आधार पर ऐसे समूह का सदस्य होता है, उदाहरण स्वरूप आयु, लिंग, प्रजाति समूह इत्यादि। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी समूह होते हैं जिसको लोग अपने किसी सामाजिक या सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्माण करते हैं, उदाहरण स्वरूप क्लब, अस्पताल, महाविद्यालय इत्यादि। दूसरा, बहुबंधन समूह। जब किसी समूह के लोग एक से अधिक प्रकार के बंधनों से बंधे होते हैं तो उसे बहुबंधन कहा जाता है। जैसे परिवार एक बहुबंधन समूह है क्योंकि उसके सदस्य विभिन्न आधारों पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। परिवार में पति पत्नी यदि व्यवहारिक आधार पर जुड़े होते हैं तो पिता पुत्र या भाई बहन रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े होते हैं। चूंकि जाति, वर्ग, जनजाति एवं राष्ट्र रूपी समूहों में लोग एक दूसरे से एक से अधिक आधारों पर जुड़े होते हैं, इसलिए ऐसे समूहों को सोरोकिन ने बहुबंधन समूह कहा है। चूंकि वर्तमान समय में समूह शब्द का प्रयोग इतने बृहत अर्थ में नहीं होता है, इसलिए आज के समाजशास्त्री सोरोकिन के समूह के इस वर्गीकरण को स्वीकार नहीं करते हैं। सोरोकिन की तरह अन्य विद्वान यह मानने को तैयार नहीं हैं कि जाति, प्रजाति या राष्ट्र भी सामाजिक समूह है। पुराने समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूह एवं विभिन्न प्रकार के सामाजिक श्रेणियों को सामाजिक समूह में मिला दिया था। इस बात की पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जाति, प्रजाति, राष्ट्र ने सभी सामाजिक समुच्चय हैं, समूह नहीं हैं।